श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रविष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर जकरयाह के द्वारा इसराइलियों को अर्थात उसकी चुनी हुई प्रजा को किस प्रकार अपने शांति की बातों को बताता है और उनके आज्ञा पालन न करने के द्वारा क्यों करवा दंड देता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम सब आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके करते हैं तो हमारी विनती है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन वे समझने पाए, अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप उनकी रक्षा करें, उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा दें, उनके परेशानियों में आप उन्हें शांति दें। हाँ पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रत्येक के जीवन के लिए अद्भुत वचन होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरयाह नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 8 का अध्ययन किया। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में बढ़ते हुए जकरयाह नबी की पुस्तक उसके अध्याय 9 और 1 से 8 पद तक का अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक मध्यांतर का अंत हो चुका है और अब हम तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसे मैं भविष्यवाणी का भारी वचन कहता हूं। मैंने इस अंश को दो भागों में विभाजित किया है हमारी सरलता के लिए। पहला है 9 से 11 पद, प्रभु यीशु के प्रथम आगमन संबंधित भविष्यवाणियां, और दूसरा है 12 से 14 पद, प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन संबंधित भविष्यवाणियां। यद्यपि यह अंश जकरयाह के आरंभिक 10 दर्शनों के आधार पर ही है परंतु भिन्न परिप्रेक्ष्य में है। स्वदेश लौटने वाले इसराइली मंदिर के पुनः निर्माण में निराश हो गए थे, अतः परमेश्वर ने उन्हें पुनः निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हग्गै और जकरयाह को खड़ा किया। जकरयाह स्थानीय वर्तमान दृश्य से आरंभ करके निकट भविष्य की समृद्धि की चर्चा करता है, तदुपरांत दूर भविष्य में प्रभु यीशु के पुनः आगमन के निमित्त परमेश्वर की योजना और उद्देश्य की चर्चा करता है। हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह को दो बार आने के विषय में देखेंगे। पहली बार वह उद्धारकर्ता बनकर आया और दूसरी बार वह राजा बनकर आएगा। उसके पहले आगमन में क्रूस है और उसके दूसरे आगमन में मुकुट है। तो आइए हम देखेंगे पहला भारी वचन, अन्य जातियों का दंड। पहले 8 पदों में हम अन्य जातियों को दंड दिए जाने के बारे में पढ़ते हैं। यह दंड सिकंदर महान के द्वारा आया था। यह एक अद्भुत अंश है। जकरिया के युग में कुछ लोग अत्यधिक आशावादी थे। शायद वे सोचते थे कि उनका स्वदेश लौट आना प्रभु राज का आरंभ है। जकरिया उनसे कहता है कि अभी एक और विश्व शासक आने वाला है। यहां हम इस विश्व शासक और परमेश्वर द्वारा भेजे जाने वाले मसीह में अंतर को देखेंगे। यह विश्व शासक सिकंदर महान है, जो हठी, घमंडी और निंदक है, तथापि संसार का सबसे अधिक कुशल सेनापति है। परंतु वह एक राजनीतिक अगुआ भी है, उसमें मोहन शक्ति भी है, उसके अनेक प्रशंसक भी हैं और उसकी प्रशंसा भी होगी। तो आइए हम पढ़ें जकर्याह 9 अध्याय उसका 1 पद। लिखा हुआ है, हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है। ध्यान दीजिए, लिखा है यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहां इसका अर्थ है परमेश्वर का दंड। सिकंदर महान परमेश्वर के दंड का साधन था। उसकी सेना ने हद्राक देश को अपने ही अधीन में कर लिया था। उसके मुख्य नगर दमिश्क और हमात को जीत लिया था। दमिश्क तो आज भी सीरिया की राजधानी है और आज भी इसराइल के लिए कष्ट का कारण है। पद 1-7 में व्यक्त नगर सिकंदर के मार्ग को दर्शाते हैं, जिससे होकर उसकी सेना ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया था। आज सिकंदर का अभियान इतिहास है, परंतु जब जकर्याह भविष्यवाणी लिख रहा था तब यह भावी घटना थी। उसकी शब्दशः पूर्ति परमेश्वर के वचन का एक अद्भुत वृतांत है। मुक्त विचारकों के लिए यह ऐसी परेशानी की बात है कि वे इस पुस्तक का लेखन काल सिकंदर के युग में मानते हैं। सिकंदर यूरोप से चलकर एशिया माइनर अर्थात आज के तुर्किस्तान में आया और एक के बाद एक नगरों को जीतता चला गया। वह निर्दयी और पार्श्विक स्वभाव का मनुष्य था। उसकी सेना में केवल 50,000 सैनिक थे, जो उस समय सेना के लिए कम माने जाते थे। अतः वह जीते हुए नगरों का शासन संभालने के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं कर पाया था। इस कारण वह उन नगरों को पूर्ण रूपेण नष्ट कर देता था कि वे उस पर पीछे से आक्रमण न करें। सिकंदर जैसा बुद्धिमान मनुष्य शराब के कारण 32 वर्ष की आयु में ही मर गया। दानियल की भविष्यवाणी में यूनानी राज्य तीसरी विश्व शक्ति है। अध्याय 2 और अध्याय 7 में से हम उसे चीते के द्वारा दर्शाया हुआ पाते हैं। अध्याय 8 में यूनानी साम्राज्य को बकरे द्वारा और सिकंदर को सिंह द्वारा दर्शाया गया है। मैं इतिहासकार यूसुफुस के माध्यम से देखता हूं कि जकर्याह द्वारा दी गई यह भविष्यवाणी सिकंदर महान की सेना का मार्ग है, जिससे वह प्रतिज्ञा के देश में आया था। जकर्याह 9 उसके 2 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है और सोर और सीदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर और सीदोन उस युग के ये दो नगर अति धनवान व्यापारिक नगर थे। जकर्याह 9 के 3 और 4 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। उस युग में सोर को अमेघ माना जाता था, क्योंकि एक तो वह समुद्र के मध्य एक द्वीप था, दूसरा वह गढ़ वाला नगर भी था। वहां के निवासी फिनिके थे, वे समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे और व्यापार के कारण बहुत धनवान थे। सिकंदर ने पुराने सोर नगर का मलवा समुद्र में डलवाकर पानी में मार्ग बनाया और 7 महीने उनका घेराव करके अंत में उस नगर को जीत लिया। आज आप वहां का यह दृश्य अपनी आंखों से देखकर भविष्यवाणी के पूरा होने का प्रमाण देख सकते हैं। सोर नगर को जीतने के बाद सिकंदर इसराइल की ओर बढ़ा। जकर्याह 9:5 में लिखा है, यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न होगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वह उस नगर में गया और उसके पास दगोन के मंदिर के चित्र भी हैं। आज यह क्षेत्र इसराइल को लौटा दिया गया है। उन्होंने अस्दोद में बहुत मकान बना दिए हैं, वहां हजारों लोग आ गए हैं और भीतर जाकर अश्कलोन का समृद्ध नगर है। परंतु प्राचीन अश्कलोन समुद्री तट पर बसा हुआ था, वहां प्राचीन नगर के खंडहर हैं और एक अति रमणीय बगीचा है, वहां लोग रहते नहीं हैं। वह नगर नहीं है, भविष्यवाणियों की पूर्ति को शब्दशः पूरा होते देखना एक अति रोचक बात है। सिकंदर महान ने इन नगरों को नष्ट करके पलिस्तियों की शक्ति को समाप्त कर दिया था। जकर्याह 9:6 में आगे हम पढ़ते हैं, अस्दोद में अनजाने लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं पलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। अस्दोद में अनजाने लोग बसेंगे, यहां अस्दोद के निर्जन रहने की भविष्यवाणी नहीं है। वह कहता है कि वहां तुच्छ जातियां वास करेंगी, वहां आज लोग रहते हैं। कहता है, मैं पलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। सिकंदर महान ने पलिस्तियों को ऐसा ध्वंस किया कि वे फिर उठ ना पाए। जकर्याह 9:7 में लिखा है, मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा, तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। कहता है, मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा, अर्थात प्रदूषित भोजन और मूर्तियों को बलि चढ़ाना वह दूर करेगा। परमेश्वर पलिस्तीन देश से मूर्तियों का अंत कर देगा। प्रभु यीशु के आने के बाद वे इसराइल के परमेश्वर को मानेंगे। लिखा है, वह हमारे परमेश्वर का जन होगा। पलिस्ती परमेश्वर की प्रजा के अंग होंगे और इसराइल की आशीषों के वारिस होंगे। सिकंदर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक राज्य को ध्वंस कर देता था, चाहे उसे महीनों वहां पर रुकना क्यों ना पड़े। जैसे उसने सोर को नष्ट किया, वह नहीं चाहता था कि कहीं भी कोई दृढ़गढ़ बचा रहे। अब वह यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है। यरूशलेम के साथ वह क्या करेगा? यहां तो बड़ी ही विचित्र बात कही गई है। आइए हम पढ़ें जकर्याह 9:8 में, तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूं। कहता है, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा। मेरे विचार में परमेश्वर इस नवनिर्मित मंदिर के विषय में कह रहा है। परमेश्वर ने कहा कि वह अपने भवन को सिकंदर महान से बचाएगा और जकर्याह को परमेश्वर के वचन पर ऐसा भरोसा था कि उसने यह लिख दिया। वह जानता था कि परमेश्वर जो कहता है उसे वह करता भी है। तो क्या ऐसा हुआ? मैं इतिहासकार क्लेवियन योसेफुस का वृत्तांत पढ़ना चाहता हूँ। उसने लिखा है कि यरूशलेम के महायाजक ने दर्शन पाया कि वह जाकर इस आगंतुक विजेता से भेंट करे, अतः वह सिकंदर महान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसे पता चला कि वह नगर से अधिक दूर नहीं है तो वह याजकों और नागरिकों का जुलूस लेकर निकला। वह जुलूस आरक्षित था और अन्य जातियों से भिन्न था, और जब फिनेके वासी और कस्तियों ने देखा कि नगर को लूटने का और महायाजक जिससे राजा अप्रसन्न है उसे पीड़ा पहुंचाने का अच्छा अवसर है, तो इसका विपरीत ही असर हुआ, क्योंकि सिकंदर ने दूर से आते जुलूस को श्वेत वस्त्रों में देखा, जिनमें याजक मलमल के वस्त्र और महायाजक वैजनी वस्त्र पहने हुए थे, और उसके हाथ में छड़ी तथा दूसरे हाथ में सोने की थाली थी जिस पर परमेश्वर का नाम लिखा था। तो वह अकेला ही आकर परमेश्वर के नाम को सराहता है और महायाजक को प्रणाम करता है। यहूदियों ने भी एक आवाज में सिकंदर को सराहा और उसे घेर लिया। सीरिया का राजा और अन्य सब सिकंदर के व्यवहार को देख आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे कि सिकंदर पागल हो गया है। पारमेनियों ने अकेले ही आगे बढ़कर पूछने का साहस किया कि जब सब यहूदी उसे सराहते हैं तो वह महायाजक को प्रणाम क्यों करता है। सिकंदर ने कहा, मैं उसे नहीं परंतु उसे महायाजक बनाने वाले परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने मकीदुनिया के दियोस नगर में इसी मनुष्य को इन्हीं वस्त्रों में दर्शन में देखा था। उसने मेरी दुविधा में कि मैं एशिया पर कैसे राज करूं तो कहा था, परंतु आगे बढ़ जा यह कहकर संकोच मत करना और साहस धरकर समुद्र पर आगे बढ़ना, क्योंकि वह मेरी सेना को चलाएगा। ऐसा उसने मुझे कहा और मैं फारसियों पर जयवंत होऊंगा। तब से मैंने इस व्यक्ति को छोड़ और किसी को इन वस्त्रों में नहीं देखा। मुझे अपना दर्शन और प्रोत्साहन स्मरण आ गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं परमेश्वर की अगुवाई में सेना लेकर चल रहा हूं और दारा पर जय पाऊंगा तथा फारसियों की शक्ति को नष्ट कर दूंगा, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। इसके बाद वह यरूशलेम में आया और मंदिर में परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरे मित्रों, एक और प्रथा के अनुसार महायाजक अपने राजसी वस्त्र पहनकर सिकंदर के पास गया और उसे दानियल की पुस्तक में लिखी उसके विषय भविष्यवाणी पढ़कर सुनाई, जिसे सुनकर वह परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने गया। उसने यरूशलेम को ध्वंस नहीं किया। यह तथ्य जकरयाह की भविष्यवाणी को अद्वितीय बनाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अति बुद्धिमान सिकंदर निर्दयी, निरशंस तथा निंदक नहीं था। वह था, परंतु वह भविष्यवाणी की पुस्तक में पूरे होते हुए हम उसे देखते हैं। मेरे श्रोता मित्रों, यह क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर की बातें पूरी होती हैं, हो रही हैं और होगी। क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में भी कार्य कर रहा है, आपको अवसर दे रहा है ताकि आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे और आप सबकी अगुवाई करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जोबा, तेरे चेहरे पे है जोबा, होठों से कैसे कहूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत।